नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कभी राजमाता के करीब थे महाराज, फिर माँ बेटे के बीच आ गई दीवार। विजया राजे, माधव राव और सरदार आंगरे, सिंधिया राज घराने का त्रिकोण। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और अपने दौर की नामचीन बीजेपी नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया की वसीयत ने एक वक्त पर सबको चौंका दिया। एक तरफ तो उस वसीयत में राजमाता ने अपनी जायदाद का बंटवारा ना करके उसे अपनी बेटियों को दे दिया था, तो दूसरी तरफ बेटे माधवराज सिंधिया से अपने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। आखिरकार माँ बेटे के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों में इतनी दूरियां आ गई? सियासी किस्से में आज बात सिंधिया राज घराने की, जिसे हम निकाल कर लाए हैं राशिद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग से। माँ बेटा और सरदार आंगरे। सरदार आंगरे, ये वो नाम है जिसे सिंधिया परिवार को नजदीक से जानने वाले राजमाता और माधव राव सिंधिया के बीच दूरियों की असली वजह मानते हैं। राशिद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग के मुताबिक एक दौर था जब राजमाता विजया राजे सिंधिया के संबंध बेटे माधव राव के साथ बेहद करीबी थे। माधव राव अपनी माँ से उतने खुले हुए थे कि उनसे अपनी गर्लफ्रेंड्स तक की चर्चा करने से नहीं हिचकते थे। सिंधिया परिवार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस नजदीकियों को दूरी में बदलने की वजह काफी हद तक सरदार आंगरे थे, जो उन दिनों राजमाता के बेहद करीबी हुआ करते थे। कैसे आई माँ बेटे में दूरियां? जाने माने पत्रकार एनके सिंह 30 सितंबर 1991 को लिखे गए अपने आर्टिकल डोमेस्टिक बैटल बिटवीन विजया राजे एंड माधव राव सिंधिया में लिखते हैं, माधव राव सिंधिया ने मुझे बताया था कि उनके और राजमाता के संबंध 1972 से खराब होना शुरू हुए थे, जब वो अपनी माँ की पार्टी जनसंघ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेना चाह रहे थे। माधव राव ने स्वीकार किया था कि ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद जनसंघ की सदस्यता लेना उनकी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उसी लेख में एनके सिंह ने आगे लिखा था कि सरदार आंगरे का मत इससे अलग था। उन्हें राजमाता, बाल और दूसरे लोग बॉल्डी कहते थे। उनका मानना था कि माधव राव ने इसीलिए डर कर अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, क्योंकि जनसंघ मध्य प्रदेश में 1972 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। माँ ने कहा, अंतिम संस्कार मत करना। बहरहाल वजह चाहे जो रही हो, मगर आगे चलकर राजमाता विजया राजे सिंधिया अपने इकलौते बेटे माधव राव सिंधिया से इस कदर खफा हो गई थी कि उन्होंने 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में कह दिया था कि मेरा बेटा माधव राव सिंधिया ना तो मेरा अंतिम संस्कार करेगा और ना ही मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होगा। ये बात और है जब 2001 में राजमाता का निधन हुआ तो मुखाग्नि बेटे माधव राव सिंधिया ने ही दी थी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये सवाल हमेशा से भारतीय राजनीति में यक्ष प्रश्न की तरह उभरता रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 1989 के चुनावों की, जिसमें जनता दल ने 144 सीटें जीती। उसे भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट दलों का समर्थन था, लिहाजा ये तो तय बात थी कि सरकार जनता दल की ही बननी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस कुर्सी के दो दावेदार मैदान में थे। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के बीच चली उसी रेस की, जिसे हम निकाल कर लाए हैं संतोष भारतीय की किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के पन्नों से। बात 80 के दशक के आखिरी सालों की है। बोफोर्स तोप घोटाले के मुद्दे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कमीशन खोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ा और संयुक्त विपक्ष के साथ मिलकर 1989 के लोकसभा चुनावों में ताल ठोकी। चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी, मगर बहुत के आंकड़े से काफी दूर। ऐसे में तय था कि 144 सीटें जीतने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ही सरकार बनाएगी, क्योंकि उसे बीजेपी और लेफ्ट का समर्थन भी हासिल था। मगर सवाल ये था कि उस सरकार का मुखिया कौन होगा। जनता दल ने चुनावों में वीपी सिंह को चेहरा बनाकर वोट मांगा था, मगर वहीं प्रधानमंत्री होंगे ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संतोष भारती अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखते हैं कि अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता वीपी सिंह को बतौर पीएम देखना चाहते थे, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के मन में खुद पीएम बनने की चाहत थी। चुनाव परिणाम के बाद उड़ीसा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने वीपी सिंह के मुंह पर उनसे कहा था, विश्वनाथ अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। उस वक्त तो देवीलाल समझा बुझाकर चंद्रशेखर को वहां से लेकर चले गए, मगर जनता दल थिंक टैंक ये समझ चुका था कि राजा मांडा को देश का प्रधानमंत्री बनाना आसान नहीं होगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।